والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہم عید غدیر میں وارد ہونے والے ہیں. عید غدیر کے جسے اسلام کی سب سے بڑی عید کہا گیا، عید اللہ اکبر کا نام دیا گیا. اب یہ نام کیوں دیا گیا اور عید غدیر اسلام کے سب سے بڑی عید کیوں ہے اور کیسے ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، جوان اس پر تحقیق کریں. مسئلہ امامت مذہب تشیع میں کیا اہمیت رکھتا ہے اور کیا حیثیت رکھتا ہے، اس پر تھوڑی سی بات کروں گا. عزیزان گرامی، مذہب تشیع میں امامت سے جدا ہو کر کوئی بھی شخص کسی عقیدے پر پائبند نہیں رہ سکتا. یعنی جتنے بھی چیزیں اور جتنے بھی کمالات اور جتنے بھی فضائل ہیں، یہ سب مسئلہ امامت اور عقیدہ امامت پر عقیدہ رکھتے ہوئے. مثلا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ امام سے جدا ہو کر، امام معصوم سے جدا ہو کر پروردگار عالم تک پہنچ جائے، یہ ممکن نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام سے جدا ہو کر خدا تک پہنچ چکا ہوں، تو یقین مانیے یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. میں دوسرے عقیدوں کی بات نہیں کر رہا، میں عقیدہ توحید کی بات کر رہا ہوں. یعنی امام معصوم سے جدا ہو کر عقیدہ توحید بھی سالم نہیں رہتا، عقیدہ توحید بھی سالم نہیں رہتا. اگر آپ امام معصوم سے جدا ہو کر عقیدہ توحید کو لینا چاہیں گے، تو پھر وہی توحید بچے گی جو وہابیت کے پاس ہے، اور آپ حضرات کو پتہ ہے کہ وہ کیسی توحید ہے. حضرت باری تعالیٰ قیامت کے دن جہنم میں اپنی ایک ٹانگ داخل کریں گے، حضرت باری تعالیٰ خانہ کعبہ کی چھت پر نازل ہوتے ہیں، حضرت باری تعالیٰ گدھے پر سواری کرتے ہیں. یہ توحید ہے جو وہابیت کی توحید ہے. ذرا توجہ فرمائیے، یہ توحید کیوں پیش آئی، یہ توحید کیسے پیش آئی، یہ توحید کیسے بنی، یہ وہابیت کے نظریات کیسے بنے؟ بس اس کا ایک جواب ہے، چونکہ یہ لوگ امام معصوم کی ہمراہی سے ہٹ کر چلے، لہذا ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں پر توحید کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. یعنی امام معصوم سے جدا ہو کر کچھ بھی ہو، چاہے ہم اسے عقیدہ توحید کہیں یا وحدانیت کہیں، وہ شرک ہے، شرک کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اگر کوئی یہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام معصوم سے جدا ہو کر پہاڑ پہ جا کر پروردگار عالم سے رابطہ برقرار کر لوں گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے. یہ شخص اپنے ذہن سے خیال نکال دے، جو کچھ ہوگا، جتنے بھی کمالات حاصل ہوں گے، جتنے بھی فضائل ملیں گے، یہ سب امام معصوم کی بدولت ہے. اور ایک اور بات کہہ دوں جس کی وضاحت نہیں کر پاؤں گا. عزیزان گرامی، ایک انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے، ایک انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ امام معصوم کی ہمراہی اور معیت میں پہنچ جائے، اور اس سے بڑا انسان کے پاس کوئی کمال نہیں ہے. آپ تاریخ اسلام کی جتنی بھی شخصیات دیکھیں گے کہ جنہوں نے کمالات اور فضائل حاصل کیے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کا سارا کمال اور سارا ان کی ساری فضیلت یہ تھی کہ وہ امام معصوم کے ہمراہ میں پہنچے۔ ایک ایک کر کے آپ شخصیت کا نام لیتے رہیں اور آپ کسی ایک ایسے شخصیت کو دکھا دیں کہ جس نے فضیلتیں حاصل کی ہوں مگر امام معصوم سے جدا ہو کر، کوئی ایک انسان آپ مجھے لا کر دکھائیے، میں کم از کم یہ بات نہیں پڑھوں گا۔ اور یہ عقلاً ممکن نہیں ہے، محال ہے کہ جس پر ہم بہت زیادہ بات نہیں کر سکیں گے۔ اس پر کیا کوئی روایات بھی پائی جاتی ہیں؟ جی ہاں، روایات پائی جاتی ہیں۔ ایک مشہور و معروف روایت ہے جو آپ حضرات نے کافی مرتبہ سنی ہوگی لیکن اس جہت سے شاید نہ سنی۔ حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، کتنی مرتبہ سنی ہے یہ روایت لیکن ابھی اس جہت سے سنیے۔ کلمہ لا الہ، پروردگار عالم نے فرمایا کہ کلمہ لا، کیونکہ یہ حدیث قدسی ہے سلسلہ الذہاب کہ جس کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل حصنی امن من عذاب، جو بھی اس قلعے میں داخل ہو جائے وہ عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ لوگ سمجھے کہ شاید حدیث یہاں پر تمام ہو گئی، امام نے فوراً ایک اور جملہ ارشاد فرمایا اور وہ جملہ ہمارا مورد بحث ہے، فرمایا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، پوری حدیث یہ ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، فمن دخل دخل حسنی امین من عذابی، وانا من شروطها، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے وہ عذاب سے محفوظ رہ گیا، اور اس کی ایک شرط میں ہوں، یعنی جب تک تم لوگ میرا سہارا نہ لو خداوند عالم کی توحید تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ممکن نہیں ہے۔ یا مثلا یہ جو مشہور و معروف آیت ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس کی تفصیل میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فطرت توحیدی کیا ہے، امام نے بتایا ہیا اللہ الہ الا اللہ، فطرت توحیدی یعنی لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، فطرت توحیدی یعنی محمد رسول اللہ۔ اس آیت کی تفصیل میں اور تفاصیل میں آپ مراجعہ کریں گے تو یہ حدیث مل جائے گی۔ امام یہاں پر رکے نہیں، فرمایا ہی اللہ الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ و علی ولی اللہ، توحید یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ پھر امام نے ایک اور لفظ فرمایا، فرمایا الہ ہونا التوحید، یہاں تک ہے توحید، یعنی صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا توحید نہیں ہے، صرف محمد الرسول اللہ کہہ دینا توحید نہیں ہے، بلکہ علی ولی اللہ بھی توحید کا ایک حصہ ہے، یعنی علی ولی اللہ کہنے کے بجائے تم جو بھی حاصل کرو گے وہ توحید کے نام پر شرک ہوگا، توحید نہیں ہوگی، توحید کے نام پر شرک ہوگا۔ حتیٰ آپ اگر چاہیں کہ قرآن مجید کو امام معصوم سے جدا ہو کر سمجھ لیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید آپس کے نزاع اور مرافعات اور لڑائیاں اور جھگڑے ختم نہیں کر سکتا جب تک امام معصوم قرآن مجید کے ساتھ نہ ہو، قرآن مجید اپنا اثر نہیں دکھا سکتا جب تک امام معصوم قرآن مجید کے ساتھ نہ ہو۔ اس پر میں مسجد حسنین میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید اپنا اثر کیسے نہیں دکھائے گا، وہ بیان نہیں کر رہا، پہلے جملے کی بات بیان کر رہا ہوں کہ قرآن مجید آپس کی لڑائیاں آپس کے جھگڑے ختم نہیں کر سکتا کہ جب تک امام معصوم کے ہمراہی نہ ہو۔ ایک انسان جتنا بھی قرآن مجید سے استدلال کرے نہیں کر سکتا جب تک امام معصوم کی رہبری نہ ہو۔ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن عباس کو بھیجا کہ جا کر خوارج سے بحث کرو تو ایک نصیحت کی، فرمایا اے ابن عباس جب خوارج کے پاس جاؤ تو صرف قرآن مجید سے استدلال مت کرنا، قرآن مجید کے ذریعے سے بات نہ کرنا۔ مولا قرآن مجید تو آپس کی لڑائیاں ختم کرنے آیا ہے۔ کہا نہیں، اگر تم قرآن مجید کی ایک آیت پڑھو گے وہ پلٹ کر ایک اور آیت پڑھ دیں گے اور اس طرح سے لڑائیاں ختم نہیں ہوں گی۔ مولا کیا کروں؟ فرمایا سیرت پیغمبر کے ذریعے سے بات کرتا۔ یہاں پر خوارج کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو بہرحال جب تک ہمارے عقیدے کے مطابق، مذہب تشیع کے عقیدے کے مطابق، جب تک امام معصوم کی ہمراہی نہ ہو कोई भी अकीदा हमारा सालिम नहीं रह सकता, ना अकीदा तौहीद, ना कुरान पर अकीदा, ना नबूवत पर अकीदा, ना मात पर अकीदा। क्यों? क्योंकि ये हैं जो हमें बताएंगे कि तौहीद क्या है, ये हमें बताएंगे नबूवत क्या है, ये हमें बताएंगे कयामत में क्या होने वाला है, ये हमें बताएंगे बरज़ख में क्या पेश आएगा। क्यों? इसलिए कि इमाम मासूम वो है कि जिसके अंदर तीन खसूसियात होती हैं, ये याद रखिएगा और इसी के जरिए से नतीजा दूंगा। तीन खसूसियात हैं, नतीजे में तीन नतायज सामने आते हैं इमाम मासूम के लिए। इमाम मासूम की पहली खसूसियत, इमाम मासूम के पास इल्म बेखता होता है, पहली खसूसियत। मैं ये नहीं कह रहा कि इमाम मासूम के पास इल्म होता है, क्योंकि मुमकिन है आप हजरात कहें कि इल्म तो होता है, हम सबके पास होता है। आपने देखा कि दुनिया रोज पर रोज तरक्की कर रही है, पेशरफ कर रही है, इल्म में इजाफा होता जा रहा है। इसीलिए मैंने एक और कैद का इजाफा किया, इल्म में बेखता होता है, क्योंकि आप हजरात देख रहे हैं कि जैसे जैसे दुनिया पेशरफ कर रही है और मुख्तलिफ उलूम को अपने हाथ में ले रही है, ये सारे उलूम खता से आरी नहीं है। सामने की मिसाल दो, कंप्यूटर, कंप्यूटर ईजाद हो गया, इंटरनेट ईजाद हो गया, ग्लोबल विलेज बन गया, लेकिन इसके आने से पहले ज्यादा अमन व अमान था या इसके आने के बाद? आप मुझे यकीनन कहेंगे कि जितना फसाद इन सारी चीजों के बाद हुआ है इससे पहले नहीं था। ये तो हमारे लिए आसानियां देने आया था, इन चीजों ने हमें आसानियां दी हैं, आसाइशें नहीं दी। यानी ये सारे इल्म खता से आरी नहीं है, लेकिन इमाम मासूम के पास जो इल्म होगा वो इल्म बेखता होगा, यानी वो कभी खता नहीं करेगा। हमारा इल्म खता कर सकता है और हमारा इल्म खता करता है, मगर इमाम मासूम का इल्म कभी खता नहीं करता। यानी अगर इस जुमले की हकीकत को महसूस करें, इमाम मासूम वो है कि जो अगर अभी कह दे कि अभी ये काम करना है तो बस वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। यानी जो होगा वही है, उसके अलावा सब गलत है, सब बातिल है, सब झूठ है। इनका इल्म है जो हकीकत तक निकल जा रहा है और उसके अलावा सब कुछ झूठ है, उसके अलावा इल्म नहीं है या इल्म है जो खता से आ रही नहीं है। इमाम मासूम की पहली खसूसियत है कि उसके पास इल्म बेखता है, उसका उसके पास एक तो इल्म है, इल्म लदुन्नी है, उसका इल्म परवरदिगार आलम के इल्म से मुत्तसिल है, और ना ये कि इल्म है बल्कि इल्म बेखता है। इस कैद को जवान याद रखें। दूसरी खसूसियत, इमाम मासूम का अमल अमल बेखता है। पहली खसूसियत इल्म बेखता, दूसरी खसूसियत अमल बेखता। क्या मतलब अमल बेखता? जिसको हम इस्तिलाह में कहते हैं इस्मत। इमाम मासूम के पास इस्मत है, यानी इमाम मासूम कभी कोई गलती नहीं करता। इमाम मासूम का अमल खता से आ रही है, उसमें खता नहीं पाई जाएगी, जर्रा बराबर उसमें कोई खता नहीं है। इमाम मासूम जो कर दे वही हुज्जत है, उसके अलावा कुछ भी हुज्जत नहीं है। कि जब अभी आप हजरत ने सुना, हजरत इब्राहिम अलैहि वाला नबीना व अलैहि सलाम ने कुर्बानियां दी और सख्त इम्तिहान दिया, जान से इम्तिहान दिया, माल से इम्तिहान दिया और औलाद से इम्तिहान दिया। फिर परवरदिगार आलम ने फरमाया, इब्राहिम इन्नी जाइलों का लिन्ना से इमाम, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला हूं। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वमिन जुर्रियती, परवरदिगार मेरी औलाद में भी इमामत रहेगी। तो परवरदिगार आलम ने ना ये कहा कि इमामत रहेगी, ना ये कहा कि इमामत नहीं जाएगी, बल्कि एक कानून दिया। फरमाया, ला यनालो अहदिज ज़ालिमीन, इब्राहिम ना मैं ये कहूंगा कि ये इमामत तुम्हारी नस्ल में जाएगी, ना ये कहूंगा कि ये इमामत तुम्हारी नस्ल में नहीं जाएगी, बल्कि कानून दे रहा हूं, जब तक ये कानून रहेगा तुम्हारी नस्ल में इमामत रहेगी, अगर इस कानून से हट गई ये नस्ल तो इमामत नहीं जाएगी। कानून क्या है? कि मेरा ये ओहदा जालिमीन तक नहीं पहुंचेगा। यानी अगर किसी की जिंदगी में जर्रा बराबर भी जुल्म पाया जाता है, उसके यहां इमामत का नामो निशान नहीं है, उसके यहां इमामत नहीं पाई जाएगी। पहली खसूसियत इल्म बेखता, दूसरी खसूसियत अमल बेखता, तीसरी खसूसियत बेबहा मोहब्बत। इमामत की तीसरी खसूसियत, इमाम बेबहा मोहब्बत करता है अपने चाहने वालों से। यह मतन रिवायत बयान कर रहा हूं कि एक इमाम एक बाप से ज्यादा चाहता है हमें और आपको, जितना हमें हमारा बाप नहीं चाहता उससे कहीं ज्यादा हमें हमारा इमाम चाहता है। क्योंकि इस तरह की रिवायात हैं, खुद इमाम ज़मान अलैहि सलाम से जुमले मनकूल हैं कि अगर हम ना होते तो तुम पर ऐसी बलाएं नाजिल होती कि तुम सोच भी नहीं सकते थे। हम हैं यानी, और इससे ज्यादा एक हसास जुमला कह रहा हूं, इस पर उम्मीद है कि शायद आप हज़रात ने ये बात नहीं सुनी होगी, जैसे कभी सुनी है तो जैसे कभी सुनिएगा। इमाम मासूम इतना हमें चाहता है, इतना हमें चाहता है कि जहां हमें कुर्बान होना था वहां इमाम मासूम खुद कुर्बान हो गए। ये रिवायात की बातें कर रहा हूं, तारीख से बातें कर रहा हूं। जहां पर हमें कुर्बान होना था वहां इमाम मासूम खुद कुर्बान हो गए। इमाम काजिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रिवायत में है कि मेरे सामने दो चीजें पेश आई, कुछ मुसीबतें थी, या तो वो मेरी उम्मत को बर्दाश्त करना थी, मेरे चाहने वालों को वो मुसीबतें उठानी थी या मुझे उठानी थी। मैंने चाहा कि वो मुसीबतें मैं उठा लूं, मेरे चाहने वाले मुसीबतों से बच जाएं। और फिर ये मैंने फवकई तो हूं बेनफसी, मैंने अपने आप को इन मुसीबतों में डाल दिया ताकि मेरे चाहने वालों तक ये मुसीबतें ना पहुंचे। और नतीजे में आप हजरात को मालूम है कि 14 साल कैद बर्दाश्त किए इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम ने। यानी दर हकीकत 61 हिजरी में जहां पर हमें और आप जैसे लोगों को शहीद होना था वहां पर इमाम हुसैन ने अपनी जान दी कि मैं चला जाऊं, मेरे चाहने वालों को कुछ ना हो। या से आगे आ जाइए आज के जमाने में, आपको मालूम है गैबत कोई आसाइशों का नाम नहीं कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम गैबत में चले गए आसाइशों में, नहीं। इमाम ज़माना गैबत जैसी मुसीबत में है ना आसाइशों में। यानी दर हकीकत वो मुश्किलात जो हमें उठाना थी हमारे वक्त के इमाम ने कहा कि मेरे चाहने वालों पर ये मुसीबतें ना आए, मैं गैबत में चला जाऊं, मैं ये सारी मुसीबतें उठा लूं मगर मेरे चाहने वाले बच जाए। और नतीजे में हमारे वक्त का इमाम मुसीबतों में चला गया और हमें आसानियां देकर चला गया। और गैबत कुबरा जैसी मुसीबतों में इमाम ज़माना आज तक हैं। यानी वो सारी मुसीबतें जो हम पर आनी थी, ये नहीं कि इमाम किनारे पर हैं मुसीबतें दूर हो गई हैं, ये नहीं कह रहा मैं कि इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने एजाज से मुसीबतों को खत्म कर दिया, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि वो मुसीबतें जो हम पर आना थी वो अब इमाम ज़माने के ऊपर जा रही हैं, वो इमाम ज़माने के ऊपर जा रही हैं। ये जो हम कुछ लोग पूछते हैं कि क्या जरूरत है दुआए सलामती इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पढ़ने की, क्या जरूरत है, उसका एक जवाब यह है कि हमारे वक्त का इमाम हमारे खातिर मुसीबतें झेल रहा है, हमारे वक्त का इमाम हमारे खातिर मुसीबतें बर्दाश्त कर रहा है। क्या मैं और आप कम अज कम उसकी सलामती के लिए दुआ नहीं कर सकते कि परवरदिगार हमारे इमाम को इन तमाम मुसीबतों से दूर रख। हमारे वक्त का इमाम चाहता है, इमाम बेबहा मोहब्बत करता है, इसी के नतीजे में परवरदिगार आलम ने इनको इमामत दी है। अगर इनके यहां ये मोहब्बत ना होती यकीन माने इनके यहां इमामत नहीं होती। पैगंबर को अबुल कासिम क्यों कहते हैं? जब किसी ने इमाम रजा अलैहिस्सलाम से पूछा कि पैगंबर को अबुल कासिम क्यों कहते हैं, इमाम ने उसका सादा सा जवाब दिया, फरमाया कि अबुल कासिम इसलिए कहते हैं कि पैगंबर का एक बेटा था कासिम, उसने कहा मौला अगर मुझे कुछ अहल समझते हैं तो कुछ और बयान कीजिए। इमाम ने फरमाया कि तुम जानते हो कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का एक लकब है, कासिमुन नारे वल जन्ना, यानी इमाम अलैहिस्सलाम जन्नत और जहन्नम को तकसीम करेंगे। इस जहत से इमाम को कहा जाएगा कासिम, यानी अमीरुल मोमिनीन कासिम है जो जन्नत और जहन्नम को तकसीम करते हैं, जाने वालों को तकसीम करते हैं कि किसको जन्नत में लेकर जाना है किसको जहन्नम में लेकर जाना है। पैगंबर इनके भी बाप हैं। और फिर फरमाया कि चूंकि अबू हुमा का लफ्ज आया है, क्योंकि ये दोनों अपनी कौम से अपनी उम्मत से अपने चाहने वालों से बेबहा मोहब्बत करते थे, लिहाजा परवरदिगार आलम ने इन दोनों को मनसब दिया है और इन दोनों को उम्मत का बाप करार दिया है। पैगंबर अकरम और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम उम्मत के बाप हैं। क्यों बाप हैं? इसलिए कि ये जितना हमें चाहते हैं इतना कोई भी नहीं चाहता। एक छोटी सी मिसाल बयान करूं, पैगंबर अकरम ने कुछ जंगें की अपनी जिंदगी में, और आपको मालूम है कि कभी पैगंबर ऐसा करते थे कि कोई हमारे मुसलमान बच्चों को पढ़ा दे और फिर हम उसे आज़ाद कर देंगे, यानी वो मौलिम बन जाए फिर आज़ाद हो जाएगा। इसी तरह से एक यहूदी था जो मुसलमान बच्चों को तालीम दिया करता था। पैगंबर ने देखा कि कुछ दिनों से वो यहूदी नहीं आ रहा, फरमाया चलो उसकी आदत को चलते हैं। आदत को गए तो क्या देखा कि उसका इंतजार का वक्त है, आखिरी वक्त है और जाने वाला है, इस दुनिया से रुखसत होने वाला है, जाने वाला है। और पैगंबर ने फरमाया कि तुमने हमारी खिदमत की है, तुम मुसलमान हो जाओ। उसने आंखें खोली, अपने लम्हों को हरकत देना चाहता था कि उसने देखा कि मेरे मां बाप सामने बैठे हैं, शर्म आई, दोबारा बेहोश हो गया। पैगंबर खड़े रहे। अच्छा, कुछ जुमले ऐसे हैं कि जो हमारे लिए बहुत सादा हैं लेकिन उनकी हकीकत बहुत अजीब है। पैगंबर इंतजार में खड़े रहे कि दोबारा होश में आए। वो दोबारा होश में आया, पैगंबर ने फिर फरमाया कि तुम मुसलमान हो जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम जहन्नम में ना जाओ। फिर पैगंबर ने महसूस किया कि उसके माँ बाप सामने बैठे हैं, और उसके माँ बाप ने भी महसूस किया कि शायद हमारी वजह से अपने लम्हों को हरकत नहीं दे पा रहा। उसने कहा कि माँ बाप ने कहा कि बेटा अगर तुम मुसलमान होना चाहते हो तो वो जो हम माने नहीं बनेंगे। फिर उसने जबान पर कलमे शहादतें जारी किया और इस दुनिया से रुखसत हो गया। यानी पैगंबर नहीं चाहते कि एक आम सा यहूदी के जिसने इनके बच्चों को तालीम दी, मुसलमान बच्चों को तालीम दी है, वो भी काफिर दुनिया से ना जाए और जहन्नम में ना जाए। जिसके लिए उस्ताद बहुत अच्छे से बात करते हैं कि वो पैगंबर जिसे ये नहीं पसंद कि एक आम सा इंसान के जो यहूदी था आखिर वक्त में वो काफिर इस दुनिया से ना जाए, क्योंकि अगर काफिर इस दुनिया से जाएगा तो हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा, उसको पैगंबर ने नहीं छोड़ा, मुझे और आपको कैसे छोड़ेंगे। कि जिसके लिए वो कहते थे कि आप मुझे अपनी जिंदगी का कोई एक आशूरा दिखाइए कि आप लोग अपने घरों में बैठे हैं, कोई एक आशूरा दिखाइए। मैं और आप किसी एक आशूर में अपने घर में नहीं बैठे पैगंबर के नवासे का मातम करते रहे। क्या पैगंबर मुझे और आपको छोड़ के चले जाएंगे? क्या पैगंबर मुझे और आप, पैगंबर को यह बर्दाश्त होगा कि मुझे और आपको छोड़ के अकेले चले जाए? नहीं, ये हमें हमारे बाप से ज्यादा चाहते हैं। पैगंबर परेशान है। किसी ने पूछा पैगंबर परेशान क्यों है? फरमाया रहमतन लिल अशिया, इन लोगों के लिए परेशान, इन लोगों के लिए मेरे दिल में रहम आ रहा है कि जो अभी जहन्नम में जाने वाले हैं। यानी पैगंबर परेशान है कि जहन्नम में क्यों जा रहे हैं। तीन खसूसियात हैं, बस नतीजा दे रहा हूं और बात को तमाम कर रहा हूं। इमाम के अंदर तीन खसूसियात, इल्म में बेखता, ऐसा इल्म जो खता नहीं करेगा, अमल बेखता, ऐसा अमल जो खता नहीं करता, और बेबहा मोहब्बत के नतीजे में ये भी हमसे बेबहा मोहब्बत चाहते हैं, नतीजे में ये भी चाहते हैं कि हम तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं तुम भी हमसे ऐसे ही मोहब्बत करो। नतीजे में जब तीन खसूसियात हैं, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि बच्चों के जहन में बैठ जाए, इल्म बेखता, अमल बेखता, मोहब्बत बेबहा, नतीजे में तीन नताइज हैं। वो कौन से नताइज हैं? पहला नतीजा विलायत तकवीनी। चूंकि ये तीन खसूसियात इनके अंदर पाई जाती हैं, परवरदिगार आलम ने इनको इन तीन खसूसियात के नतीजे में विलायत तकवीनी। जो लोग हमसे ये कहते हैं कि परवरदिगार आलम ने हमें इमाम क्यों नहीं बनाया, उनके लिए जवाब है, इसलिए नहीं बनाया कि हमारे अंदर ये तीन खसूसियात नहीं थी, इनके अंदर थी, इन्हें बना दिया। पहला नतीजा विलायत तकवीनी, यानी मा सिवल्ला हर चीज का इख्तियार इनके पास है। मा सिवल्ला, परवरदिगार के अलावा हर शय का इख्तियार। के काश कभी वक्त हो और इस बात को बयान किया जाए कि इख्तियार कैसा है और किस तरह का है। मा सिवल्ला हर चीज का इख्तियार, आलम में कौन हो इम्कान का इख्तियार इनके पास है। लेकिन कोई ये ना समझे कि परवरदिगार आलम अब मौतल हो गए या परवरदिगार आलम की जरूरत नहीं, नहीं, हमारा अकीदा ये है जो ऐन तौहीद है। अभी अपना अकीदा बयान करता हूं। हमारा अकीदा जो ऐन तौहीद है वो ये है कि ये परवरदिगार आलम से लेकर हमें देते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं देते। कि जो ऐन तौहीद है, ये जितने भी इनके इख्तियार हैं मा सिवल्ला, चूंकि इनके अंदर ये खसूसियात पाई जाती थी, इन्हें ये इख्तियार परवरदिगार आलम ने दिया है जो ऐन तौहीद है। इनके पास विलायत तकवीनी है, ये हर शय का इख्तियार रखते हैं। कोई पत्ता इनकी मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता, बारिशें इनके बगैर नहीं बरस सकती, सब्जा इनके बगैर नहीं है, अमनो अमान इनके बगैर नहीं है। जो कुछ मिलेगा इनके जरिए से रिस्क मिलता है, इनके जरिए से बारिश बरसती है, इनके जरिए से ये सारी नेमतें और बरकतें और फजीलतें हम पर नाजिल होती हैं। अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मलाइका का वजूद इनके जरिए से है। काश एक एक जुमलों की तौसी बयान की जाए, जो मतन रिवायत है, ऐन रिवायत है। मलाइका का वजूद इनके जरिए से है। जो कुछ मलाइका को इन्होंने तस्बीह करना सिखाई, मलाइका को इन्होंने तकदीस करना सिखाई, हमें इन्होंने बोलना सिखाया कि इस तरह से परवरदिगार से कलाम करते हैं। अगर ये हमें बोलना ना सिखाते तो यकीन मानिए आप मुझे बताइए क्या परवरदिगार से कलाम कर सकते थे हम और आप? अभी रोजे अरफा गुजरा है, दुआ अरफा इंशाल्लाह कि हम सबने पढ़ी होगी, उसके चंद जुमलों का आप मुलाहजा कीजिए। बस एक आध जुमला भगत को बयान करूं। इस तरह से अगर मासूम हमें बात करना ना सिखाते तो वाकई हमें बात करना आती? बताइए, मन कानत महासिल हूं मसावी फकैफा मसावी है मसावी। परवरदिगार जिसकी नेकियां भी बुराई हो उसकी बुराई कैसे बुराई होगी? लाइए जुमले का कोई एक जवाब लाकर दिखाइए। मता गिबता हत्ता तहताजा इला दलील, तू गायब कब तक तेरे पर दलील लाई जाए? अंधी है वो आंखें जो तुझे देख नहीं सकती। मता गिबता हत्ता तहताजा इला दलील, हम दलीलें लाते हैं। इमाम फरमाते हैं तुझ पर दलील की जरूरत नहीं है। वो चीज तुझ पर कैसे दलील बन सकती है जो खुद तेरी मोहताज है? मासूम फरमा रहे हैं वो चीज तुझ पर कैसे दलील बनेगी जो खुद तेरी मोहताज है? जो खुद तेरी मोहताज है वो तुझ पर कैसे दलालत करेगी? दुआ रफा के जुमले हैं, इन्होंने बोलना सिखाया। ये सारी चीजें इनकी वजह से, ये ना होते तो ना कोई फजीलत ना कोई बरकत कुछ भी हमारी जिंदगी में नहीं होता। अगर हमें दुनिया की सारी फजीलतें चाहिए तो उसका बस एक इलाज है। अगर कोई दुनिया की सारी फजीलत को लेना चाहता है, सारी बरकतों को लेना चाहता है तो उसका बस एक ही इलाज है, और वो इलाज है कि वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का एक अदना सा गुलाम बन जाए, और उसके अलावा कोई हमारे पास इलाज नहीं है। दुनिया की सारी बदबख्तियां यहां से शुरू हुई, तवज्जो फरमाइएगा। दुनिया की सारी बदबख्तियों की इब्तिदा, जो आज हमारे सामने बदबख्तियां हैं, जो आज हमारे सामने इतनी मुश्किलात हैं, दुनिया की सारी मुश्किलात और सारी बदबख्तियों की इब्तिदा वहां से शुरू हुई कि जब लोगों ने अमीरुल मोमिनीन का दरवाजा छोड़कर दूसरों के दरवाजों पर सर झुका लिया। उसी वक्त से सारी बदबख्तियों की इब्तिदा शुरू हो गई। बहरहाल पहला नतीजा, तीन खसूसियात के नतीजे में, पहला नतीजा विलायत तकवीनी, दूसरा नतीजा विलायत तशरीई। इनके पास शरीयत का इख्तियार है। ये इख्तियार कैसा है इसको बयान अभी नहीं कर सकूंगा। विलायत तशरीई, विलायत तकवीनी भी है, विलायत तशरीई भी है। तीसरा नतीजा विलायत इज्तिमाई, जिसको बहुत ज्यादा बयान नहीं किया जाता। इनके पास इज्तिमा का इख्तियार है, इज्तिमा का इख्तियार है। एक बात आप अदरा से करूं कि ये इस गलत फहमी से हम लोग निकल जाएं। हमारे यहां एक सोच पाई जाती है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम का इज्तिमा से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सोच है और हमारी बहस भी हो चुकी है, इज्तिमा से कोई ताल्लुक नहीं है। उनकी फजीलतें, उनका इल्म और ये सारी चीजें उनकी बहुत सारी मौजूद हैं। इज्तिमा से उनको कोई रब नहीं है, ना हुकूमत ना किसी चीज से कोई रब नहीं है उनका। एक बात कहना चाहता हूं, आप मुझे बताइए हमारा और अहले सुन्नत का इख्तिलाफ किस बात पर? क्या हमारा अहले सुन्नत का इख्तिलाफ इस बात पर है कि अमीरुल मोमिनीन को आदिल इंसान नहीं समझते? नऊज़ु बिल्लाह। क्या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को अफ़काह नहीं समझते? क्या वह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की फजीलतों के इकरार करने वाले नहीं है? ये तो ये इनके खुलाफा ने अमीरुल मोमिनीन की फजीलतों का इकरार किया, बार बार इकरार किया। कम से कम 70 मरतबा से ज्यादा खलीफा दोगों का जुमला मौजूद है कि लौला अली लहला का उमर, 70 मरतबा से ज्यादा ये जुमला कहा है उन्होंने, ये जो खुद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की फजीलतों पर दलालत कर रहे हैं। यानी कम से कम ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की फजीलत के तो मुमकिन नहीं है। फिर इख्तिलाफ किस बात पर है? फजीलतों के हम भी मुमकिन नहीं है, फजीलतों के ये भी मुमकिन नहीं है। यकीन मानिए ये कहते थे कि सारी फजीलत अली के पास हैं मगर इज्तिमा की रहबरी का इख्तियार अली के पास नहीं है। इख्तिलाफ यही था, जब सारी फजीलत अली के पास हैं तो पैगंबर के बाद इज्तिमा की रहबरियत का इख्तियार भी अली के पास होना चाहिए था। कहते थे नहीं सब है मगर ये नहीं है अली के पास। कि जब इब्ने अबिल हदीद मुतअज़िनी ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की फजीलत गिनवाना शुरू की शरह नजम अलाका में तो एक जगह जुमला लिखा, चूंकि उनको उन्होंने साबित कर दिया कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम सारे खुलाफा से बेहतर थे। अलबत्ता ये मुवाजना भी गलत है, लेकिन उनकी बकौल उनकी जबान में। امیر المومنین علیہ السلام سارے خلافہ سے بہتر تھے، جب سارے خلافہ سے بہتر تھے تو انہی کے پاس رہبری بھی ہونی چاہیے تھی، معاشرے کی رہبری، انہی کے پاس معاشرے کی امامت بھی ہونی چاہیے تھی، تو انہوں نے یہ جملہ لکھا، جب پھنس گئے تو ایک جملہ لکھا، کہنے لگے الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل، تمام فضیلتیں اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے فضیلت رکھنے والے پر اس کو فضیلت دی کہ جو فضیلت نہیں رکھتا، یعنی یہ ساری غلطیاں پروردگار عالم کے یہاں، یعنی یہ ساری جو غلطیاں ہم نے کی ہیں وہ پروردگار عالم کا نام لگا دے کہ در حقیقت ہم نے غلطی نہیں کی، یہ پروردگار عالم نے غلطی کی ہے۔ بہرحال یہ تو ہے کہ ساری فضیلتیں ان کے یہاں پائی جاتی ہیں، اختلاف اس بات پر فضیلت، اگر کوئی یہ غلط فہمی میں مبتلا ہے تو اپنے غلط فہمی صحیح کر لے، اختلاف فضیلت میں نہیں ہے، اختلاف اسی بات پر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ معاشرے کی رہبری ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے، ہم کہتے ہیں معاشرے کی رہبری کا اختیار بھی انہی کے پاس ہونا چاہیے تھا کہ جو ان سے چھین لیا گیا، اگر معاشرے کی رہبری ان کے پاس ہوتی، متن روایت بیان کر رہا ہوں، اگر معاشرے کی رہبری ان کے پاس ہوتی تو دنیا میں دو ایسے افراد نظر نہ آتے جو توحید پر جھگڑا کرتے، دنیا میں دو ایسے افراد نظر نہ آتے جو توحید پر جھگڑا کرتے۔ ان کے یہاں جو ہمارا موضوع بھی یہی تھا کہ جس کے لیے میں نے سارا مقدمہ بنایا، ان کے یہاں ہر مشکل کا حل پایا جاتا ہے، ان کے یہاں ہر مشکل کا حل پایا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد جو سلسلہ چھوڑ کے گئے ہیں، بارہ اماموں کو سلسلہ چھوڑ کے گئے ہیں، در حقیقت یہ کوئی نئی زندگی پیش نہیں کر رہا تھا، یہ سلسلہ کہ سلسلے نے نیا کوئی زندگی پیش کیوں نہیں، بلکہ یہ وہی پیغمبر کی اجمالی زندگی کو تفصیلی زندگی میں بدل رہا تھا، جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ در حقیقت اس طرح ہے کہ یہ ایک ہی انسان ہے کہ جس نے 250 سال زندگی گزاری، درحقیقت ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان آیا پھر دوسرا امام آ گئے پھر تیسرا امام آ گئے مختلف انسانوں کی شکل میں، نہیں، یہ ایک ہی انسان ہے جو کبھی علی کی شکل میں، کبھی حسن کی شکل میں، کبھی حسین کی شکل میں، الاخر مختلف شکلوں میں زندگی گزار رہا ہے، اور 250 سالہ زندگی میں اس انسان نے ہمیں ہر مشکل کا حل پیش کر دیا۔ دنیا کی کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جس کا حل اس نظام کے پاس نہ پایا جاتا ہو، جس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں بات تمام کروں۔ غیبت کے زمانے میں آج جتنے بھی استنباط ہو رہے ہیں یہ کہاں سے ہو رہا ہے، آج جتنے بھی مشکلات کا حل پیش کیا جا رہا ہے، یہ فقہا ہمارے سامنے آئے ہیں، یہ کہاں سے حل پیش کر رہے ہیں؟ اپنے پاس سے نہیں، یہ حل کہاں سے پیش کر رہے ہیں؟ جواب، میں اس فقی کو فقی نہیں مانتا جو اپنے پاس سے مشکلات کا حل دے، توجہ فرمائیے گا، میں اس فقی کو فقی نہیں مانتا کہ جو اپنے پاس سے مشکلات کا حل دے، میں اس فقی کو فقی مانتا ہوں جو اہل بیت کے یہاں سے ہماری مشکلات کا حل دے، اور عالم بھی اسے کہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ یہ مہارت رکھتا ہو کہ اس کے ہاتھ میں اہل بیت کی زندگی ہو، اسے پتا ہو کہ آج جو ہمارا یہاں مشکل پیش آئی ہے اس کا حل فلاں امام کی زندگی میں موجود تھا۔ ہمارے یہاں جتنی بھی مشکلات ہیں کوئی ایسی مشکل نہیں جس کا حل ہمارے پاس نہ ہو، کمال ہمارا یہ ہے کہ ہم ان مشکلات کو اہل بیت کی زندگی میں تلاش کر کے اہل بیت کی زندگی سے حل حاصل کریں کہ یہی مشکل فلاں امام کے زمانے میں پیش آئی تھی، فلاں امام نے اس مشکل کے مقابل میں ایسا کیا تھا، لہذا مجھے بھی اس مشکل کے مقابلے میں ایسا ہی کرنا ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ دسترس ہو جائے تو یقین مانیے ہماری ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور اس 250 سالہ زندگی نے ہماری ہر مشکل کو حل کر دیا کہ تمہاری زندگی میں آئندہ کے قیامت تک کی جتنی بھی مشکلات ہیں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کہ مشکل ہو اور اس کا ہماری زندگی میں حل نہ ہو۔ ایک ظاہری مثال دوں، آپ دیکھیں آیت اللہ خامنئی دنیا کے بہترین انسان ابھی مانے جاتے ہیں یا نہیں، کہ جنہوں نے پوری دنیا کے دشمنوں سے ٹکر لی ہوئی ہے اہل بیت کے مذہب کی خاطر، لی ہوئی ہے یا نہیں؟ آپ مجھے بتائیے کتنے سال تک، 35 سال سے زیادہ ہونے کو آ رہا ہے، کسی ایک مقام پر دکھائیے کہ انہوں نے جو ڈیسیجن لیا ہو، جو فیصلہ کیا اس میں جھول ہو۔ کیا میں علم غیب کا ادعا کر رہا ہوں ان کے لیے؟ نہیں، علم غیب کا تو ادعا نہیں کر رہا، پھر ان کے فیصلوں میں جھول کیوں نہیں ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ علماء کہہ رہے ہیں، یہ علماء کی بات بیان کر رہا ہوں، ان کے فیصلوں میں جھول کیوں نہیں ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ اگر ان کی زندگی ملاحظہ کریں، آیت اللہ خامنئی کی بہت زیادہ گہری نظر ہے اہل بیت کی زندگی پر، بہت زیادہ گہری نظر ہے، بہت زیادہ تاریخ کے ماہر ہیں اہل بیت کی زندگی کے، मसला यह है कि जब भी कोई नई मुसीबत पेश आती है, नई मुश्किल पेश आती है, इनको पता होता है कि इस मुश्किल का हल फुला इमाम की जिंदगी में पाया जाता था, फुला इमाम ने इस मुश्किल के मुकाबले में ऐसा किया था, कि वही कहते हैं जो इमाम ने कहा था। जब वो कहते हैं तो मुश्किल खुद ब खुद बरतरफ हो जाती है। क्यों? इनकी जिंदगी है जो हमें मुश्किल से निकालने वाली है, और इनकी जिंदगियों के अलावा सारी जिंदगियां हमें जहन्नम में लेकर जाने वाली है। ये जो लोग जुमला कहते हैं, मौलाना साहब हमें अहले बैत से ना मिलाइए, अगर कोई मुश्किल पेश आए तो हम कहते हैं कि अहले बैत की जिंदगी में ये था, आपको भी ऐसा करना चाहिए था, तो लोग कहते हैं मौलाना साहब हमें अहले बैत से ना मिलाइए, तो किससे मिलाएं? हाकिम शाम से मिलाएं, किससे मिलाएं? यजीद से मिलाएं, किससे मिलाएं? अमरयात से मिलाएं? हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, जो रास्ता मुश्किल से निकालेगा वो यही रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और अगर किसी को मुश्किल से हल चाहिए तो इनके दरवाजे पे आना होगा, हर मुश्किल का हल इनके पास मौजूद है, जो मैं जुमला कहना चाह रहा था। इसीलिए आप देखें अहले सुन्नत के यहां कई सौ साल पहले कियास और इस्तेहसान का दरवाजा खुल चुका है, हमारे यहां आज भी कियास भी हराम है, इस्तेहसान भी हराम है। कियास क्या है? अपनी अक्ल को इस्तेमाल करके परवरदिगार आलम का हुक्म समझना, अपने अक्ल के जरिए से परवरदिगार आलम के मसलहत समझना। अहले सुन्नत के यहां जब दरवाजे बंद हो गए तो उन्होंने कियास का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि अब इस मौरिद में हमारे पास कुछ रिवायत, कोई रिवायत नहीं है, जब रिवायत नहीं है तो कोई तो हुक्म खुदा होगा, अब इस हुक्म खुदा को हम समझेंगे। नऊज बिल्ला, वो कि जो अपने आप को नहीं समझ पाए वो हुक्म खुदा को समझने का इत्तेहा कर रहे हैं, और कहने लगे कि हम इस हुक्म खुदा को समझेंगे, और नतीजे में उन्होंने कियास और इस्तेहसान के दरवाजे खोल दिए। कोई एक बंदा दिखाइए, कोई एक फकीर दिखाइए आज के जमाने तक, कोई एक फकीर दिखाइए कि जिसने ये कहा हो कि हमारे यहां कियास जायज है, हमारे यहां कोई एक फकीर दिखाइए जिसने ये कहा हो कि यहां पर तो हुक्म खुदा नहीं पाया जाता, लिहाजा मैं कहता हूं कि मैं ये समझ रहा हूं और मैं यहां पर यह कियास कर रहा हूं। यानी कियास हमारे यहां आज भी हराम है। कियास हराम क्यों है? कियास इसलिए हराम है कि कियास वो करे कि जिसके पास कोई रिवायत ना हो, जिसके पास मुश्किल का हल ना हो। हमारे पास कोई ऐसी मुश्किल नहीं है कि जिसका हल अहले बैत ने अपनी जिंदगी में पेश ना किया हो। जब सारी मुश्किलात के हल मौजूद हैं तो ना कियास की जरूरत है ना इस्तेहसान की जरूरत है। आखिर में परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम हमें हकीकी माना में अमीरुल मोमिनीन का पैरोकार बना दे, परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, मर्दा इस्लाम को शिफाए कामिल अजला अता फरमा, हम सब की मुश्किलात को दूर कर दे, ममलिकत पाकिस्तान की मुश्किलात को दूर कर दे, उलमाए हक्का मराजे किराम खुसूसन मकाम मौज़म रहबरी का सही असरों पर बरकरार फरमा, परवरदिगार दुश्मनों को खुसूसन अमरीका इसराइल वहाबियत को नीस्त व नाबूद फरमा, अहले बैत के चाहने वाले मुदाफईन हरम जो अहले बैत के हरम का दिफा कर रहे हैं उन सब के जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत के साथ उन्हें कामयाब फरमा, हम सब के इमाम ज़माने के इमाम में शामिल फरमा।